के गुणों के गान में वर्धमान महान जिन पिचरे हमारे ध्यान में। 108वीं गाथा चलेगी ना, पढ़ो।
द्रव्य वह गोड़ नहीं अरे गोड़ द्रव्य ना तद्भाव है सर्वथा जो अभाव है वह नहीं तद्भाव है।
बहुत सीधी सच्ची गाथा है। द्रव्य गुण नहीं है और गुण द्रव्य नहीं है, ऐसे अभाव को अतद्भाव कहते हैं, सर्वथा अभाव को अतद्भाव नहीं कहते हैं। यानी कोई वस्तु जगत में सर्वथा अभाव रूप नहीं होती, पर इसका इसमें अभाव और इसका इसमें अभाव ऐसा ही होता है। तो द्रव्य का गुण में अभाव और गुण का द्रव्य में अभाव, ऐसा नहीं। यदि हम अतद्भाव को सर्वथा अभाव रूप मानेंगे तो टीका में बताए हैं कि इसमें तीन दोष आ जाएंगे, तो उन्हें अपन पढ़ते हैं। बहुत सरल गाथा है, ज्यादा उसमें बात है नहीं, हो सकता है अपन आज ही अगली गाथा पे भी चले जाएं। जो गाथा ही पढ़ो तो मालूम पड़ा, जम दब्बम तन्ना गुणो, जो द्रव्य है वह गुण नहीं है। दो भी गुणो सोण तच्च दो अथो, जो गुण है वो वास्तव में पदार्थ नहीं है। एसो अतद्भावो, एस को अतद्भाव कहते हैं। नैव अभावो तिर्दिठो, सर्वथा अभाव को अतद्भाव नहीं कहते। कि सीधी सच्ची बात है। इसका अपन टीका पढ़ते हैं। एक द्रव्य में जो द्रव्य है वह गुण नहीं है, जो गुण है वह द्रव्य नहीं है। इस प्रकार जो द्रव्य का गुण रूप से अभवन नहीं होना अथवा गुण का द्रव्य रूप से अभवन है वह अतद्भाव है, क्योंकि इतने से ही अन्यत्र रूप व्यवहार सिद्ध हो जाता है। सबसे पहले एक पंक्ति में जो शब्द कहा है ना, एक द्रव्य में, माने इस बात को तुम दो द्रव्यों के बीच में घटित मन नहीं करना, क्योंकि अन्यता और अनन्यता एक द्रव्य में ही घटित होती है। एक द्रव्य के अंतर्गत जो भेद हैं उनको अन्य अन्य कहते हैं और जो अभेद है उसे अनन्य कहते हैं। इसको हम बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान एक देश है, तो देश के भीतर जो प्रदेश हैं उनमें और देश में अन्यता है। माने राजस्थान हिंदुस्तान नहीं है और हिंदुस्तान राजस्थान नहीं है, पर ये कथनचित ही हो सकता है, सर्वथा नहीं हो सकता है, क्योंकि सर्वथा तो राजस्थान वाले हिस्से को भी हिंदुस्तान कहते हैं ना। तो ऐसे ही द्रव्य हिंदुस्तान जैसा है, जो गुण है वो राजस्थान जैसा है। इतना फर्क है कि इसमें प्रदेश की अपेक्षा घटित किया और उसमें गुण की अपेक्षा घटित किया है ना। तो कहते इतने से ही अन्यत्व का व्यवहार सिद्ध हो जाता है। हमारे राजस्थान मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश राजस्थान नहीं, तो हमारी जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हमारा इतने में ही काम चल जाता है। जैसे राजस्थान है वो देश नहीं है, तो उसे सेना रखने की जरूरत नहीं है, है? अपने का सेना रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों बोलते हो? ऐसा बोलो ना, उसके पास सेना नहीं है, अरे उसको जब उसके रक्षा की पूरी गारंटी केंद्र की है तो उसे सेना रखकर वो इतना खर्चा अपने माथे पे बढ़ाने के अलावा और उसको क्या होना था, खर्चा ही बढ़ता ना उसको, तो उसको अपना विकास करने के लिए पूरी निश्चिंता ही मिल गई। देखो राजनीति से मैं एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा, वो राजनीतिक बात भी महत्वपूर्ण है जानने लायक और ये सिद्धांत भी समझ में आएगा। जब दुनिया में दूसरा युद्ध समाप्त हुआ और हिटलर मारा गया तो उस वक्त हिटलर माने जर्मनी, जर्मनी का था ना, तो जर्मनी और जापान ये दोनों एक साथ थे, अपने जो सुभाष चंद्र बोस भी उन्हीं के साथ हो गए थे। अभी ज्यादा कमेंट्स में सुभाष चंद्र बोस पर नहीं करना चाहता हूं लेकिन इतना समझ लो कि वे उनके साथ थे और वो कहते थे कि उनसे हम तय कर लेंगे कि हम यदि अंग्रेजों को जीतने में तुम्हारा सहयोग करेंगे तो तुम हमें आजाद कर दोगे, फिर मतलब हम भारत आजाद हो जाएगा, इस तरह वो आजादी चाहते थे। और दूसरा ग्रुप था अमेरिका, इंग्लैंड, इंग्लैंड के गुलाम अपन थे तो अपन भी उसी तरफ कहलाए। वे भी ये कहते थे द्वितीय विश्व युद्ध में जीत जाएंगे उसके बाद हम आपकी स्वतंत्रता पर विचार करेंगे, माने हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, ये बात चलती थी। फिर अभी सुभाष जी को तो एक तरफ रखना, जब लड़ाई खत्म हुई तो अभी जो जर्मनी और जापान इस ग्रुप के हाथ में आ गए, कौन सा ग्रुप था जिसमें रशिया, ब्रिटेन और अमेरिका ये सब शामिल थे, तो इनने उन्हें आधा आधा बांट लिया, जर्मनी के दो टुकड़े कर दिए, आधा जर्मनी एक ने ले, जर्मनी एक ने ले लिया, आधा जर्मनी दूसरे ने ले लिया है? जापान के साथ भी ऐसी तकलीफ हुई, जापान पे तो अनुबंध डाला ही गया था, तब तो वो हथियार उन्होंने समर्पित किए थे, नहीं तो वो हथियार थोड़ी समर्पण करते, अनुभव नहीं गिरता, जब उन्होंने देखा कि सर्वविनाश हो जाएगा तो उन्होंने समर्पण किया था। तो उनके साथ सबसे ज्यादा बुरा हुआ ना, क्या हुआ कि उनको कह दिया गया कि तुम सेना नहीं रखोगे, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी, अमेरिका ने रूस ने उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी ले ली, आप समझे ना, अब तुम अपना फिर अपना काम करो, अपने देश को तुम चलाओ स्वतंत्रता तरीके से, हम ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे और बस तुम्हें सेना नहीं रख सकते क्योंकि तुम खतरनाक लोग हो, फिर अनुभव में एटम बम बना लेते हो तो ये झगड़ा खड़ा हो जाता है और दूसरा विश्वयुद्ध हो गया तो तीसरा विश्वयुद्ध हो जाएगा, ख्याल में है ना। और जो भारत आजाद हुआ, चाइना आजाद हुए तो इनकी अपनी सेना भी रखी, क्योंकि पूरा देश आजाद तो तभी कहलाए ना कि जब उसकी सैनिक अपने पास हों और वो उसकी आज्ञा में चलें। तो उस वक्त सबको ऐसा लगा कि वे गुलाम हो गए जापान और जर्मनी और हम आजाद हो गए, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा ना। फिर जापान ने देखा कि भाई अपन तो गुलाम हैं, अपने पास सेना तो है नहीं, अपन लड़के तो कहीं कुछ कर लड़ ही नहीं सकते किसी से, अब तो अपन तो मेहनत मजदूरी ही अपने हाथ में है, तो उन्होंने खूब मेहनत की और उद्योगों का विकास बहुत किया, घर घर में उद्योग डाल दिए, हर घर में कारखाना, कोई भी चीज बनानी हो ना तो तुम इतने घर में बना के ले आओ, इतनी ले आओ, पैसा ले जाओ। तो उसको विश्व में आज सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति जापान है, अमेरिका के उसे भी ज्यादा, ये किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये उसे बरदान सिद्ध हो गई वो कि हमें तुम सेना नहीं रख सकते, कि सेना के ऊपर जो इतना खर्चा है वो बिल्कुल खर्चा करना नहीं पड़ा और कोई मेहनत उन्हें सेना के लिए करनी नहीं पड़ी, कितने आदमी भी बच गए, आदमी की मेहनत भी बच गई, ज्यादा पैसा भी बच गया, तनखा नहीं देना है, तो उनने सारी उद्योग में लगा दी। जमीन तो उनके पास थी नहीं ज्यादा, इसलिए वो खेती वेती ज्यादा बढ़ाकर अनाज वनाज पैदा कर ले, तो उनके बस की थी नहीं, तो उनने मशीनें बनाई, मोटर कारें बनाई, ये सब चीजें बनाई और विश्व के मार्केट पर कब्जा कर लिया। आप ये समझ नहीं सकते हैं कि ये कितने किस तरह से एड़ी टेढ़ी राजनीति होती है आर्थिक। जो जापान में टीवी बनता है ना, सोनी का टीवी, वो हिंदुस्तान में आपको मान लो 25,000 में मिल जाता है, तो जापान में 3,00,000 में मिलता है, बनता जापान में। अब आप सोचो माता कि क्या क्या ये क्या, उनको तो और 10,000 में मिलना चाहिए ना। क्यों? अपने यहां गेहूं पैदा होता है तो अपन गेहूं अपने को तो मिले 50 रुपये किलो और अपन पाकिस्तान को 10 रुपये किलो दें, ऐसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा होता है। ये चीनी है ना, चीनी, ये चीनी यहां मिलती है मान लो आपको 50 रुपये किलो, तो बाहर अपन 20 रुपये किलो बेचते हैं। ये कैसे क्यों बेचते हैं? और देश में कम होती है, इसलिए कि विदेशी मुद्रा चाहिए। और विदेशी मुद्रा काहे को लिए चाहिए? कि विदेशी मुद्रा में हमें जो विदेश की चीजें हैं वो खरीदने हैं। क्या खरीदने हैं? कि हमको हथियार खरीदने हैं। अरे अब हमारे, अब हम जापान जैसा समझौता हो गया होता, समझ गए ना, तो हमें हथियार खरीदने ही नहीं पड़ते। जो हम विदेशी मुद्रा कमाते उससे हमारा बहुत समृद्धि हो जाती। तो जापान ऐसा क्यों करता है? कि बाहर के मार्केट पे कब्जा करना है, तो दूसरे लोग जितना सस्ता माल दे सकते हैं हम उससे सस्ता देंगे, तब तो हमारा मार्केट पे बिकेगा ना। वो 25,000 में टीवी आपको नहीं दे सोनी, तो उसका सोनी टीवी बिकेगा नहीं, क्योंकि 27,000 में 28,000 में तो अमेरिका देता है वैसे ही टीवी। ऐसी कार है और खर्चा तो ज्यादा पड़ता है, यानी घाटा कर करके वो विदेशों में मार्केट पे कब्जा करते हैं, और जब मार्केट पे कब्जा हो जाता है तो फिर महंगा कर लेते हैं, कमाई कर लेते हैं। अब अमेरिका उनके सामने खड़ा नहीं हो सका, क्योंकि अमेरिका में जो कार $10,000 में बनती है वो जापान $5,000 में बना लेता है, वो कंपटीशन नहीं कर सकता। यानी वो जो चीज सबसे बुरी थी वो सबसे अच्छी बन गई, क्योंकि हमारी पूरी शक्ति हम अपने विकास पर खर्च कर सके, आर्थिक भी और शारीरिक भी, मेहनत भी, हम पूरी तरह से उसमें लग गए। और हिंदुस्तान को अभी हथियार खरीदने हैं, सेना बढ़ानी है, ये करना है। नेहरू जी ने ये बात समझी थी, समझना, तो उन्होंने 1962 तक कितना 47 से 15 साल अपने सेना पर ज्यादा खर्चा नहीं किया। ये तो थोड़ा झंझट पाकिस्तान का लग गया था, नहीं तो वो चाहते थे खर्चा करना ही नहीं जापान जैसा, और सारे विकास पे करना, तो देश एकदम जापान जैसा हो जाता और 10-5 साल गाड़ी चलती रहती। लेकिन ये चाइना के साथ जो झगड़ा हो गया, तो उस वक्त फिर अब ये आवश्यकता महसूस हुई कि अपन को सेना बनानी पड़ेगी, हथियार बनाने पड़ेंगे, अणुबम भी बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये साला अपने को खा जाएगा। समझ गए ना, जब भी अमेरिका बचाने आया था, हालांकि बचाने आने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उसने अपने जहाज वहां से रवाना किए थे, इतने में ही इसकी अकल ठिकाने आ गई थी, तो उसने ठीक मतलब झगड़ा बंद कर दिया था। लेकिन उससे नुकसान क्या हुआ देश का, कि सारे हमारा बजट सेना पर लग गया। तो उस वक्त जो यहां इंजीनियर की बहुत कमी थी, डॉक्टरों की बहुत कमी थी। अब वो सब नई नई शोधें इंजीनियर कल कारखाने बंद हो गए और सब सेना के में खर्चा होने लग गया, तो ये सारे इंजीनियर और डॉक्टर इस वक्त यहां से भाग भाग के विदेश गए। और जो अमेरिका में जो अभी डॉक्टर और इंजीनियर हिंदुस्तान के दिखते हैं वो 1962 के बाद के हैं, क्योंकि यहां काम ही नहीं मिलता था। यहां वो विकास के काम हो तो इंजीनियर को काम मिले, कोई बांध बने तो बांध बनाने वाले इंजीनियर को काम लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये जो सेना पर जो खर्च है ये हमारे विकास की गति को बहुत बड़ी बाधा है। अब हमको ये लगता है कि जापान को कभी भी कोई दबाएगा, अपने कब्जे में कर लेगा, इसका सारा विकास क्या करेगा वो। लेकिन वो विश्व की राजनीति ऐसी फंसती है कि यदि अमेरिका दबाए तो रसिया साथ में आ जाता है इस पर सहयोग करने, रसिया दबाए तो अमेरिका आ जाता है। मतलब वे आपस में भिड़ती हैं बड़ी बड़ी शक्तियां, वो छोटा वाले सुरक्षित रहते हैं। सिंगापुर जैसा देश 35 लाख का कुल देश आजादी से विकास कर रहा है, क्योंकि वही सुविधा उसे भी है, उसे सेना में ना रखनी नहीं है, समझ रहे ना। ये कैसा गणित है समझ रहे ना आपकी में, कि अभी आपके यहां वो चीज महंगी करते जाएंगे। वो कहते हैं कि हम ये अपने जापानी कहते हैं हम देंगे ना तुम्हें 3 लाख में टीवी, तो क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हें 3 लाख तनख्वाह देंगे ना, तब तो तुम टीवी को 3 लाख देंगे, ऐसा थोड़ी मुफ्त में कि तुम खरीद ही नहीं पाओ। यानी उनको महंगाई की अंदर में, जब हम गए जब यहां 5 रुपये में चाय मिलती थी, जब 67 रुपये में एक चाय कप मिलता था, कहां जापान में कितने में 67 रुपये का एक कप चाय, तो आपको ऐसी महंगाई में कैसे जिंदा रहते होंगे। तो वे लोग क्या हम उतना देंगे ना तुमको, काम कराएंगे उसमें पैसा देंगे, तो जो बहुत हिसाब है विचित्र है, तुमको और पता लगता होगा कि धर्म का पंडित ये बातें कहां से जानता है, क्यों। लेकिन जानने लायक बात थी क्या नहीं थी, तुम लोगों को भी ये बात जानने लायक है कि नहीं है कि विश्व की क्या पोजीशन है। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में आज सुबह के प्रवचन में बता रहे थे ना कि अपना माइंड पूरा इधर लगाओ, अपना माइंड यदि तुमने बाहरी काम में लगा दिया तो तुम जैन दर्शन के जैसे विद्वान बनना चाहिए वैसे विद्वान नहीं बनोगे, क्यों। लेकिन किसी ने ये बताने वाले ने कि क्या कहा डॉक्टर साहब ने आज, ये बात नहीं बताई, कौन कौन था मुझे पता नहीं, अब मैं वहां से आगे देखा करूंगा कौन कौन है यहां, क्यों समझे थी ना ये बात। लेकिन एक किसी ने जो बताई ना बातें उसने ये नहीं बताई कि क्या है, अपने उपयोग को आप जितना अधिक इसमें लगा सकोगे। कहीं हमारा खाली टाइम है ना साहब, आपका कोई पीरियड नहीं है, कोई पढ़ाई नहीं है, छुट्टी है। अरे छुट्टी छुट्टी तो इसलिए रखी जाती है कि तुम 8 घंटा काम करते करते थक गए हो तो तुम्हें आराम मिले, तो तुम दोबारा फिर 8 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाओ। संडे की छुट्टी इसलिए रखी जाती है कि तुम 7 दिन काम करते करते एक रूटीन दिनचर्या से थक गए हो तो एक दिन थोड़ा तुमको रिलैक्स मिले, तुम डबल काम ओढ़ लेते हो उसको उस दिन, तो तुम और थक के आते हो, फिर सोमवार को आराम से सोओगे ऑफिस में, समझ में। एक ही काम में अपना पूरा माइंड लगाना यदि विशेषज्ञ बनना है तो, किसी भी क्षेत्र का मतलब तो ये है कि जिसको जो क्षेत्र पसंद हो। अपने हिसाब से तो इसी अध्यात्म का ही, अपने तो यही क्षेत्र चुना ना, फिर पूरी शक्ति उसमें लगाई। ये मत समझो कि मैं सारी दुनिया की सब बातें समझूंगा तो मैं ज्यादा मानूं जा। देखो आप भी सब बातें बताते हो राजनीति की उसकी इसकी, मैं भी बताऊं, अच्छी बात है, आ जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन अपने विषय के विशेषज्ञ होना, तुम्हारी विशेषज्ञता इस विषय में देखी जाएगी। तुम जैन दर्शन के विद्वान हो तो जैन दर्शन में यदि तुम नहीं समझते हो तो तुम मूर्ख कहलाओगे। एक वकील इससे कहें कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है, पर वकील नहीं बता पाए तो उसे कोई कमजोर वकील नहीं मानेगा, मूर्ख वकील नहीं मानेगा। लेकिन 420 क्या होता है ये नहीं बता पाए तो वो मूर्ख वकील है। और डॉक्टर 420 का अर्थ नहीं समझे क्यों, तो उसे कोई मूर्ख डॉक्टर नहीं कहेगा। लेकिन अपने विषय में वो यदि विशेषज्ञ है, गहराई से जानता है, तो वो मूर्खता मानी जाती है। हम दुनियादारी के मिसाल हम सब सर्वज्ञ थोड़े हो सकते हैं, समझे ना। हर हर भाषा का विशेष जानकार हर एक थोड़ी हो सकता है। आजकल ऐसा हो गया था कुछ दिनों में कि जो अंग्रेजी जाने में पढ़े लिखे, जो अंग्रेजी नहीं जाने में पढ़े लिखे नहीं, क्यों? तो एक भाषा ही वाले पढ़े लिखे होते हैं, हिंदी वाले, संस्कृत वाले और जर्मनी वाले और भाषाओं में नहीं हो सकता। हम और चार भाषाओं के विशेषज्ञ हैं, हम अंग्रेजी का ABCD भी नहीं जानते हो तो उसमें क्या है। वो अंग्रेजी वाला संस्कृत का ABCD नहीं जानता, वो भी ऐसे ही मूर्ख है कि नहीं? तो हम फिर उसे विद्वान मान लेते हैं मूर्ख होने पर भी, तो वो हमें क्यों नहीं मानेंगे? ये जमाना सर्वज्ञों का नहीं है, विशेषज्ञों का है। क्या समझ रहे? सर्वज्ञ माने हम सबको जानते हैं, इस अहम वालों का नहीं है। हम अपने विषय के मास्टर हैं, उसमें मैं अथॉरिटी हूं। कल कहा था ना, मैं अथॉरिटी हूं। ऐसा कौन भी जेंस अंदर से आना चाहिए, अभिमान की बात नहीं है। जरूरत पड़ती है तो बताना पड़ता है। क्या कोई भी एरा गहरा न चूखेरा आए पर कुछ भी बना है, साहब ये ठीक है, मैं जहां तक समझता हूं फलाने गुणस्थान में फलाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, सम्मत दर्शन तो 11वें गुणस्थान में होना चाहिए, क्या करें? तो मूर्ख की हम सुनेंगे क्या करेंगे? बोलो क्या कहना जी, चुपचाप बैठो, शांति से सुनना हो तो सुनो, नहीं तो बाहर जाओ। नहीं, मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न, पहले तुम हमसे प्रश्न लायक करने लायक बन के आओ। ऐसी मूर्खता का प्रश्न करोगे तो तुम्हें यहां नहीं बोलने दिया जाएगा। आया समझ? अपने विषय की विशेषज्ञता होना हो गई ना। कहां चल रहे थे? द्रव्य का अभाव गुण है, पर गुण का अभाव द्रव्य है। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है। देखो अब इसमें उसमें क्या फर्क है? उसमें तो वो कथनचित वाला था कि द्रव्य गुण नहीं है, गुण द्रव्य नहीं है, और इसमें सर्वथा अभाव का उदाहरण है। द्रव्य का अभाव गुण है और गुण का अभाव द्रव्य है। आप समझे ना, द्रव्य में गुण का अभाव है और गुण में द्रव्य का अभाव है। द्रव्य का लक्षण अलग है, गुण का लक्षण अलग है, ये बात अलग है। और दोनों का एक है ही नहीं, कि गुण में द्रव्य तो है ही नहीं, कि द्रव्य में गुण तो है ही नहीं, अनंत गुण है ना। ऐसे लक्षण वाला अभाव अतद्भाव नहीं है, क्योंकि ऐसा हो तो एक द्रव्य को अनेकत्व तो आ जाएगा, उभय शून्यता आ जाएगी और अपोह रूपता आ जाएगी। तीन दोष बताए हमने। यदि जो हमने कथनचित माना है, यदि सर्वथा अभाव मानेंगे तो ये तीन दोष आएंगे। हम लोग पढ़ते थे तो ये अपोह का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया था। क्या पढ़ते थे? आपमीमांसा अन्यापोह व्यतिक्रमे, है ना, पंक्ति है ना, अन्यापोह व्यतिक्रमे। तो जो
वो पंडित मक्खनलाल जी थे, वो सबसे बड़े न्याय अलंकार कहलाते थे, तो हम उनके पास गए कि जी अन्यापोह क्या है। अब अभी भी ऐसा ही लगता है लोगों की अन्यापोह क्या है, क्या देखो तीन चीजें आ जाएंगी, कौन कौन, अनेकत्व आ जाएगा, उभय शून्यता आ जाएगी, माने दो ही नहीं रहेंगे, और अपोह रूपता आ जाएगी, ये उसका नहीं, उसका नहीं, ऐसा एक दूसरे के अभाव रूप ही होंगे, सद्भाव रूप कुछ होगा नहीं। अब इसी बात को विस्तार से समझाते हैं, तथा ही ऊपर तथा ही लिखा होगा ना, लिखा देखो और लाएंगे वो कोई ना कोई ऐसी उदाहरण। चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य है। अब देखो ये दो द्रव्यों के बीच में घटित कर रहा है, चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन, ऐसा नहीं कहा गुण का अभाव द्रव्य में है कि ज्ञान का अभाव दर्शन में है, चेतन द्रव्य का अभाव अचेतन द्रव्य में है और अचेतन द्रव्य का अभाव चेतन द्रव्य में है। इस प्रकार का अभाव तो भिन्न भिन्न अनेक द्रव्यों में पाया जाता है। लिखा मिल गया, अपनी बात काहे की चल रही, एक द्रव्य की कहां लिखा, टी का शुरू करो तो सबसे पहला शब्द है एक द्रव्य में, मैंने ध्यान दिलाया था क्या, यानी एक द्रव्य में घटित करना है, और यदि हम सर्वथा मानेंगे तो जैसे अनेक द्रव्यों में है भिन्नता, वैसी भिन्नता का प्रसंग आ जाएगा, समझ में आ रहा है। देखो इस कारण द्रव्य का अभाव गुण, गुण का अभाव द्रव्य, यदि ऐसा माना जाए तो जिस प्रकार भिन्न भिन्न द्रव्यों में अनेकत्व है, इसी प्रकार का अनेकत्व द्रव्य और गुण में भी हो जाएगा, समझ में आया क्या नहीं। जैसे जीव और पुद्गल अलग अलग हैं, ऐसे ही ज्ञान और आत्मा भी अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग तो हैं लेकिन वैसे अलग अलग नहीं है। अध्यात्म में कहते हैं ना कि राग हमसे भिन्न है, अनात्म से भिन्न है, तो भिन्न है ना, ये तो बात सही है कि भिन्न है अध्यात्म में। अब फिर राग दो तरह का है, कौन कौन सा, शुभ अशुभ नहीं, पुण्य पाप नहीं, एक मेरा राग और एक तेरा राग, एक स्वा का राग और एक पर का राग। अब समझ आए, कहते तो दोनों को राग ही है, लेकिन मेरा मेरे मैं मेरा राग के साथ मेरा अन्यत्व है, समझना, वो तुम्हारे राग के साथ मेरा भिन्नत्व है, कि वो तो पर्याय है, वो तुम तो दो द्रव्यों के बीच होता है भिन्नता तो, लेकिन परद्रव्य की पर्याय है ना, तो हाँ द्रव्य ही पकड़ना पड़ेगा कि दोनों भिन्न है ना आत्मा से, कौन, कि तुम्हारा राग मेरे आत्मा से भिन्न है और मेरे में उत्पन्न होने वाला राग मेरे आत्मा से भिन्न है, ठीक है, कुछ फर्क है, बताओ, हाथ उठाओ, कितने कितनों को मालूम है, मेरे अंदर जो राग है उससे मुझे कर्म बंध होता है, और तुम्हारे अंदर जो राग है उससे मुझे कर्म बंध नहीं होता, फिर दोनों अलग अलग, एक सही दो अलग हैं, एक से अलग होते तो एक से मुझे कर्म बंध और दूसरे से कर्म बंध नहीं, ऐसा कैसे होता, हनुमान तुम समझ जाएगा, ये अध्यात्म चलता ना, पर से भिन्न राग से भिन्न, तो कौन सा राग, सारी दुनिया का राग, अरे वो राग पर्याय से भिन्न वाला राग नहीं है, वो तो पर द्रव्य में जाता है, पर द्रव्य से भिन्नता की बात कही तो दूसरों का राग हमारे लिए पर द्रव्य है, फिर आप कहोगे राग, राग तो पर्याय है, राग को द्रव्य कह रहे, अब क्या कहें, तुम्हें इतना समझना पड़ेगा ना, इतनी अकल तुम्हें होना चाहिए ना, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि परद्रव्य के गुण और परद्रव्य की पर्याय, ये तीनों को परद्रव्य कहते हैं, इनका एक नाम क्या है, कि पर्याय को परद्रव्य कहते हैं, यहां तो अपनी पर्याय उसे भी परद्रव्य कहते हैं, ये भी अध्यात्म में है, लेकिन ये परद्रव्य अलग टाइप का है, ऐसा है कि जैसे तुम्हें कर्म बंद होगा, तुम करोगे तो तुम्हारी पिटाई होगी, उस राग से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा अंतर जो है वो भी हमारी समझ में आना चाहिए। जो एकत्व है वस्तु के स्वरूप में, दो द्रव्यों के बीच, दो पर्यायों के बीच, दो गुणों के बीच, द्रिगुण के बीच, वो एकत्व भी हमारी समझ में आना चाहिए और भिन्नत्व भी हमारी समझ में आना चाहिए। तो अभी हो गया ना, कहां पढ़ रहे हैं अपन? तो पहला दोष कौन सा था? अनेकत्व। तो अनेकत्व हो गया ना, अनेकत्व माने भिन्नत्व। जैसे ये चेतन द्रव्य है, ये अचेतन द्रव्य है, तो अनेक उनमें अनेकत्व है, माने दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, माने पृथक पृथक हैं, आप समझे ना। और एक 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 दोष हो गया, इसलिए तुम ऐसा नहीं मानो तो ये दोष नहीं आएगा। दूसरा, जिस प्रकार सोने का अभाव होने पर सोनेपन का अभाव हो जाता है, यानी सोना खत्म हो गया तो सोनापन कहां रहेगा, और सोनापन खत्म हो गया तो सोना रहेगा। मैंने सोने में सोनापन रहना ही चाहिए, और सोनेपन में सोना रहता ही है, समझ में आए ना। तो एक एक सोना है द्रव्य और सोनापन है गुण, तो द्रव्य का गुण में रहना, गुण का द्रव्य में रहना जरूरी है। अन्यथा इनमें यदि अलग अलग मानेंगे, कैसा अलग अलग मानेंगे? जैसा चेतन और अचेतन में माना था, समझ में आ रही परमात्म के नहीं, थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि करनी पड़ेगी, उपयोग यहां वहां भ्रष्ट करोगे तो फिर मैं जिम्मेवार नहीं हूं, ख्याल नहीं ना। तो वो कहते अनेकत्व, जैसा अनेकत्व चेतन और अचेतन द्रव्यों में है, अनेकत्व माने पृथकत्व, वैसा ही हमारे द्रव्य और गुण के बीच हो जाएगा। और जबकि वैसा है नहीं, तो अनेकत्व आ जाएगा। अब कि दोनों का अभाव हो जाएगा, दूसरा ये कि दोनों का अभाव कैसे हो जाएगा, कि जब तुम सोनेपन का तो निषेध करोगे और सोना रखोगे तो सोना रहेगा, और सोना को तो सोना का निषेध करो और सोनेपन को रखो, नहीं, फिर दोनों एक साथ रहते हैं, हैं जुदे जुदे रहते एक साथ है, तो नहीं तो दोनों का अभाव हो जाएगा, उभय शून्यता। दूसरा, पहला क्या? अनेकत्व। दूसरा क्या? और तीसरा अन्य अपूहत्व। अब अन्य अपूहत्व क्या है? देखो भैया, उभय शून्यता हो जाएगी। उसी प्रकार द्रव्य का अभाव होने पर गुण का अभाव, और गुण का अभाव होने पर द्रव्य का अभाव हो जाएगा, और दोनों का अभाव हो जाएगा तो उभय शून्यता हो जाएगी। अब जिस प्रकार पटाभाव, ये पटाभाव क्या होता है? पट माने वस्त्र, पर अभाव माने उसका नहीं होना। पटाभाव मात्र घट है। अब ये ऐसा मत है कि भाई घड़ा क्या है, कि कपड़ा नहीं। तो ये बात तो सही है कि पट घट नहीं है। आचार्यों में दो तीन शब्द आते थे वैसे, घटपट और रथ, समय सार में लिखा घटपट रथानी दब्बाणी, ये आत्मा घटपट रथ का इन द्रव्यों का करता है कि नहीं है। क्योंकि जब मुनिराज आहार करने को नगर में आते थे तो एक उन्हें घड़ा बनाने वाला कुमार दिखता था, घर घर जाते थे ऐसे निकलते हुए, तो बस घड़े बने हैं, रखे हैं, हवा लग रहा है, वो दिखता था। मांगनंदी फंस गए थे ना, और एक एक कपड़ा बुनने वाले दिखते थे। तो घट हो गया, पट हो गया, और एक बैलगाड़ी बनाने वाले मिलते थे, रथ माने बैलगाड़ी। अब बंदो रथ को कोई ऐसा समझने लगे कि जो कभी होली दिवाली कोई हो तो निकले तो रथ कहलाता है, ये रथ ही है, कार वगैरह ये सब अपने ये जो है ना चौपाए सब, ये सब रथ है। तो निकाल दिए, रथ क्यों नहीं निकाल देते, इतने रथ तो रखे अपने यहां, इस रथ को कार्टून बनाओ तो रथ कहलाएगा, कि जब वो चलने लायक नहीं ले जाए। हमने तो धर्मचक्र भी ऐसा बनाया था कि 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ा है। मैं बोलता हूं, एक प्रचन में बोलता हूं, मीटिंग में अलग हो जाएगा, तुम जैसे करना और करना। तो मेरे हिसाब से तुम्हें जैसा बनाना हो वैसा बना लो और उसे रथ बोलो। सारे देश में से मैं उसे रत्ना बुलवा दूं तो मेरा नाम हुकुमचंद नहीं, ऐसा नहीं है। दो गधे जोड़ दो उसमें, ठीक है। अपन तो जानवर को नहीं जोड़ते, अपनी दिक्कत तो ये हो गई कि अपन कोई जानवर का उपयोग नहीं करते हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि कौन जानता है रथ किसे क्या चीज है। तुमने देख ली जो ये रथ जो बनाते हैं कुछ नहीं समझते हैं। क्यों? रथ तो उसे कहते हैं वो युद्ध में काम आते थे। समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं? आते थे ना कि वो रथ में बैठते थे, बारात जाती थी ना तो बड़े लोग रथ में बैठते थे, फिर उससे जरा छोटे लोग हाथी पे बैठते थे, फिर उससे छोटे लोग घोड़े पे बैठते थे, फिर उससे छोटे लोग पैदल चलते थे। बारात में भी ऐसा होता था और उस सेना में भी ऐसा होता था। तो वे रथ मतलब हाथी से तेज दौड़ते होंगे कि मध्य उनमें, आप तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब वो रथ कैसा होना चाहिए मैं सिद्ध कर दूंगा कि तुम्हारा रथ रथ नहीं है, ये तो हिल नहीं पाता है। जितने रथ बनाते हैं ना और भगवान को बैठा के निकालते हैं, भगवान को ऐसा क्या समझते हो तुम? वो रथ हिले नहीं पर कहां है वो रथ? कहेंगे नहीं साहब रथ ये है, तो हम सिद्ध करेंगे कि नहीं ये नहीं रथ। किसने देखा बताओ? जो भी रथ थे जिसमें बैठ करके गए थे कौरव पांडवों की लड़ाई हुई थी, वे रथ ऐसे होंगे? पता ना अर्जुन का रथ जिसके सारथी श्री कृष्ण थे, वो रथ कैसा होगा? कभी कभी फोटो में बना देते हैं ये जैनी लोग, सूरज के घोड़े दौड़ रहे हैं और सूरज का रथ और आकाश में भाग रहा है, क्या मेरी बात समझ में आती ना? तर्क संगत है ना। वो तीन चीजें जो सवारी के काम आती थी, समझे ना, उन सब को जो लकड़ी के बनते थे, लकड़ी का काम करने वाले को बढ़ई बोलते हैं ना आजकल, कारपेंटर बोलते क्या बोलते हैं है? तो घटपट रथानी दब्बाणी, अब क्या बता रहे? घटाभाव और पटाभाव। जिस प्रकार पटाभाव मात्र घट है, वो कहते घड़ा क्या है? तो पटाभाव। अरे पटाभाव तो है लेकिन अकेला पटाभाव घट नहीं है, वो घट कुछ पॉजिटिव भी है। देखो ये चश्मा क्या है? कि रूमाल नहीं, ये बात सच्ची नहीं है कि चश्मा रूमाल नहीं है। बात सच्ची है लेकिन रूमाल का अभाव मात्र चश्मा नहीं है। यही कह रहे आप पढ़ो, इतने से समझ में आएगी तुम्हारी में। अब देखो जिस प्रकार पटाभाव मात्र घट है और घटाभाव मात्र पट है, इस प्रकार दोनों में अपोह रूपता माने केवल नकारात्मकता है ना, उसी प्रकार द्रव्याभाव मात्र गुण है और गुणाभाव मात्र द्रव्य है, इस प्रकार इसमें अपोह रूपता आ जाएगी। मतलब अब समझ लो कि घट का अभाव पट है, कि घट कपड़ा किसे कहते हैं? घड़ा नहीं होना। अब इससे क्या सिद्ध करोगे तुम? कुछ भी सिद्ध नहीं होगा। इसे अन्य अपोह नाम का दोष कहते हैं। तीन दोष आ जाएंगे, बता दोगे? क्यों सब बता दोगे? आगे बढ़ूं? कल पूछूंगे आज? समझना, तुम लोग भी बता दोगे कि क्या कहा गया है यहां? तीन दोष खड़े हो जाएंगे, क्या मानोगे? द्रव्य और गुण के बीच में यदि अत्यंता भाव जैसी चीज मानोगे तो तीन दोष खड़े हो जाएंगे। इन तीन दोषों के नाम क्या हैं? अनेकत्व, उभय शून्यता और अपोहत्व। ये बात समझ में आनी चाहिए और आप बता दो तो समझ लो इस गाथा का भाव आपके ख्याल में आ गया। और चार जैसी रट लो तुम, चार जैसी बोलवा दो, उसका कोई मतलब नहीं। वो भाव हमारे ख्याल में आना चाहिए। हो गया। अब यहां इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है, यदि वो अपने निष्कर्ष इसका निकाला है क्या यही है कि नहीं, एक आध तेरा और रह गया। इस प्रकार द्रव्य का अभाव गुण और गुण का अभाव द्रव्य मानने पर द्रव्य और गुण में अनेकत्व उभय शून्यता और अपूर्व रूपता के प्रसंग उपस्थित होंगे। अब वही बात रिपीट की, मैंने मुंह से बोल दी थी, नहीं पड़ी है। इसलिए द्रव्य और गुण में एकत्व अशून्यत्व और अनुपोहत्व को चाहने वाले अतद्भाव का वही लक्षण स्वीकार करें जो कि यहां कहा गया है, जो हमने बताया है वो माने तो तुम्हारा लक्षण निर्दोष होगा, नहीं तर उसमें ये तीन दोष आ जाएंगे। बस इस प्रकार इस गाथा में यह कहा गया है कि द्रव्य और सत्ता, सत्ता माने अस्तित्व गुण में परस्पर सर्वथा अभाव नहीं है, अतद्भाव है। यह बात को सिद्ध करते हुए टीका में यह कहा गया है कि यदि द्रव्य और सत्ता गुण में परस्पर सर्वथा अभाव मानोगे तो तीन दोष उपस्थित होंगे जो इस प्रकार हैं। एक हमारे पुराने शास्त्रों में हर एक के उदाहरण नक्की थी, जैसे यहां पर घटपट रथ चलता है ना, इतना समय सार में प्रतिन सार में ऐसे ही वो आपका न्याय शास्त्र में अनुमान का चलता है ना, अनुमान को यत्र यत्र धुना तत्र तत्र बंदी उनको अग्नि और समुद्र धुआं बस उसमें ही घूमते रहते थे सब आचार्य। तो हम जब पढ़ते थे न्याय तीर्थ में हम आपस में कहते थे कि ये अपने गुरु जी के बारे में कि इन गुरु जी की सारी जिंदगी यत्र यत्र बंदी तत्र तत्र धुआं इसमें ही निकल गई अपन तो अगली साल पढ़ के निकल जाएंगे और दूसरे आएंगे पर यत्र धूमा तत्र तत्र बंदी कहता महान साया था पता ना ताला ऐसा सोई गया पर यही करते करते निकलेगी। तो ऐसे ही वो कहते होंगे कि ये आध्यात्मिक लोग घटपट घटपट ही करते करते निकल जाएंगे इनकी जिंदगी आत्मा कहते हैं ना, ये आत्मा ही आत्मा लगे रहते हैं, यानी आत्मा ही आत्मा दिखता है और कोई बात ही नहीं करते हैं। अरे भाई ये तो हरेक का ऐसा ही जीवन होता है किसी भी क्षेत्र में। वैज्ञानिकों के पास जाओगे तो उनके विज्ञान की भी वही वही बातें मिलेंगी सुनने को, वकीलों के पास जाओगे तो वही कानून कानून की बातें सुनने को मिलेंगी, डॉक्टर के पास जाओगे तो दवाई दवाइयां की बातें ही मिलेंगी और दवाई भी निश्चित होती हैं, एंटीबायोटिक्स ये फलाने दो चार तरह के नाम होते हैं बस खत्म। और ये दे नहीं दे, ये विटामिन एंटीबायोटिक्स ये दर्दनाशक है, दर्दनाशक को क्या बोलते हैं पेन किलर बस खत्म, एक पेन किलर एक एक पिलर एक क्या क्या है बस खत्म। और भी डॉक्टर लोग सारी जिंदगी उसमें ही खेलते रहते हैं बस। तुम किसी भी डॉक्टर के यहां चले जाना, छोटे गांव में चले जाना और फिर देखना वहां बैठ करके चार आठ दिन नोट करते जाना, तो बिल्कुल वे चार पांच दवाइयां वे मरी वही स्टाइल वही पैसा लेने की स्टाइल बिल्कुल एक बिल्कुल ऐसी चीज बिल्कुल ऐसी रूटीन बना होता है वैसे रूटीन लेने करेगा। ऐसे वकील का वो बिल्कुल वही रूटीन वही भाषा जो अदालती भाषा होती है ना, ये हमारी तुम्हारी भाषा काम नहीं आती, हम बढ़िया काव्य महाकाव्य लिख सकते हैं बढ़िया भाषा लिख सकते हैं लेकिन वो अदालत की भाषा को उस मुंशी से लिखानी पड़ेगी क्या, अस्वीकार है अस्वीकार है अस्वीकार है ऐसी लिखनी पड़ेगी। और हरे उनकी सारी जिंदगी उसमें ही निकल जाती है और वो कहते बहुत होशियार है, बस वो अपने उस सीमा में ही होशियार होते हैं। लोग कहते हैं कि ये सब इतने बड़े ऑफिसर हैं डॉक्टर हैं इंजीनियर हैं इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी है कहते ना, तो अपनी किताबों का अनुवाद क्यों नहीं करा लेते। एक लेन का नहीं कर सकते हैं, डॉक्टरों को सिर्फ डॉक्टरी अंग्रेजी आती है और कुछ नहीं आता है, रोटी दाल की भी नहीं आती है। वकीलों को वकालत की अंग्रेजी आती है, ऐसे ही है। हमको गुजराती आती है, बस सिर्फ गुरुदेव की गुजराती आती है, तत्व ज्ञान की गुजराती आती है, उत्तरकाली ध्रुव वाली, बाकी हम रोटी दाल वाली गुजराती नहीं समझते बिल्कुल भी। समझ में ना, दो चार नाम जानते खांगड़े मांगड़े तो कभी बोल बाल के थोड़ा हंसी मजाक कर लेते हैं, पर क्या आता है बोलो। कह रहे हम गुजराती भी जानते हैं, बोलते हैं कि नहीं बात, लेकिन हरेक की एक लिमिटेड टाइप की चीज होती है, वो लिमिटेड उसमें ही विशेषज्ञता होती है। बस आप अपने उसमें विशेषज्ञ बनो, झगड़ा कहता हूं। वे ऐसे लोग जो बहुत होशियार अपने काम में माने जाते हैं, बाहर से बहुत मूर्ख जैसे दिखते हैं, रेलवे स्टेशन पर, प्लेन में, हवाई अड्डों पर जाए उन्हें देखोगे तो नहीं, ये डॉक्टर है, ये वकील है, इसे कुछ तो आता जाता नहीं है। एक पोस्ट कार्ड वो डाक के डब्बे में नहीं डाल सकते, डाला ही नहीं आज तक, कैसे डाले, कहां डाले, कि इसमें डाल दो, ये लाल लाल डब्बा है ना, इसमें डाल दो, कहां से डाला जाता है, ऊपर से कहते समझते हो, तुम भी ऐसे ही बनने वाले हो यदि विशेषज्ञ बनोगे तो। अभी भी डाकिया आए और वो साइन कराता है ना, चिट्ठी मिल गई तो उसे बताना पड़ता है कहां साइन करना है, वो बिना पढ़ा लिखा होता ना बिल्कुल, वो कहता है साहब यहां लिख दीजिए, यहां कर दीजिए, तो हम वहां मक्खी मार देते हैं। मन उसे बताना पड़ता है, बैंक वाले को बताना पड़ता है यहां साइन कर दो। हर में अन्य मामलों में हरेक आदमी ऐसा ही होता है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि तब वो अपने मामले में विशेषज्ञ होगा। अपने मामले में विशेषज्ञ होने के लिए क्या होना चाहिए, अन्य मामलों में मूर्ख होना चाहिए, माना अपने दिमाग को उधर ज्यादा नहीं लगाए, समझे ना, तो इसमें विशेषज्ञता प्राप्त करेगा। यदि अन्य मामलों में मूर्ख होने को ही विशेषज्ञता का लक्षण मान लें तो कौन सा दोष आएगा, बोलो बोलो जल्दी सोचो, अन्य पोष, समझ ना, कि ये बात सही है कि हम अन्य बातों में विशेषज्ञ नहीं होते हैं, लेकिन अन्य बातों में विशेषज्ञ नहीं होना इसका नाम विशेषज्ञता नहीं है, माने वो बुद्धि वहां नहीं लगकर पूरी तरह यहां लगे तो विशेषज्ञता कर रहे, समझ नहीं, यहां तो लगी नहीं। अब अपन फटाफट पूरा करते हैं इसे, जिस प्रकार यहीं से पढ़ना है ना, तीन पॉइंट हैं ये, वही तीन पॉइंट है, मैं समझ आपने बता दिए हैं, इसलिए इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं होगी। जिस प्रकार दो द्रव्यों में परस्पर पृथकता है, अनेकत्व है, उसी प्रकार की पृथकता या अनेकत्व द्रव्य में और सत्ता गुण में हो जाएगा। एक कितनी सरल भाषा में कह दिया, अनेकत्व हो जाएगा माने कैसा हो जाएगा, अनेकत्व तो है ही, अन्य पोहे रूप वो नहीं हो, क्या नाम, क्या बोलते हैं, अन्वय, अन्वय नहीं, अन्यत्व है, हाँ। द्रव्य के अभाव में गुण का सद्भाव संभव नहीं है, और गुण के अभाव में द्रव्य का सद्भाव संभव नहीं है, इस प्रकार एक के अभाव में दोनों का ही अभाव हो जाएगा, तात्पर्य यह है कि दोनों की शून्यता हो जाएगी। ये सब बातें अपनी मान्यता में होंगी, वस्तु में कुछ होने वाला नहीं है, ये तो समझने समझाने के लिए नेगेटिव बात कही जाती है। जैसे वो चक्को जम्बू दीपो, कि इंद्र में इतनी ताकत है कि जम्बू दीप को ऐसा गेंद जैसा उलट दे, जैसे ये है ना, ऐसा उलट दे, इतनी ताकत है, कभी उल्टा है कि नहीं, आज तक नहीं उल्टा, तो काय को गप मारते हो, ऐसी ताकत किस काम की कि जो कभी काम में ही नहीं आए, कहते खुदा गंजे को नाखून नहीं देता, समझ आई है क्या क्या अर्थ है इसका, कि गंजा आदमी हो और नाखून हो तो ऐसे खुदा है तो खून खच्चर हो जाए अपना माथा,
ऐसे ही जिसमें इतनी शक्ति होती है उसे इतनी कसाय नहीं देता कि उसे जम्बूदीप को पलटने का भाव आए, और जिसमें इतनी कसाय होती है उसे ऐसी शक्ति नहीं होती है, है ना। द्रव्यंजित हो गया, उभय शून्यता हो गई ना, द्रव्या सत्ता गुण को परस्पर एक दूसरे के अभाव रूप स्वीकार करने पर अपोहता अर्थात सर्वथा पूर्ण अभावात्मकता शून्यता आ जाएगी, फिर कुछ ही नहीं रहेगा। तात्पर्य यह है कि द्रव्य और गुण मात्र अभाव रूप ही रहेंगे, उनका कोई भावात्मक स्वरूप नहीं रहेगा। जब भी कहेंगे तो किसी को अभाव रूप कहेंगे, किसी को अभाव रूप कहेंगे, बस। इसलिए यही ठीक है कि हम द्रव्य और सत्ता गुण को पृथक पृथक ना माने, पर अन्य अन्य तो मानना ही चाहिए। अब कभी कभी लोगों को ये लगता है जो पृथक पृथक और अन्य अन्य का अंतर नहीं समझते हैं, क्या बात करते हैं, एक मिनट में कहते हैं मानना चाहिए, एक मिनट नहीं, वो दोनों को एक ही समझते हैं। पृथक पृथक मत मानो, अन्य अन्य मानो, कि दोनों एक ही है ना, पृथक पृथक नहीं माने तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। अन्य अन्य है, अन्य अन्य है तो जुदे जुदे है ना, पृथक पृथक है ना, कि नहीं नहीं पृथक पृथक। अब उसी समझ में नहीं आता क्या कह रही, समझ में आया ना। इस प्रकार इन दोनों में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता सिद्ध होती है। इस प्रवचन सार में समझने के लिए ध्यान रखो, तो भिन्नता तो दोनों को कहते हैं, और एक को कहते हैं अन्यता और एक को कहते हैं पृथकता। समझे, दो द्रव्यों के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं पृथकता, पृथकत्व और अपृथकत्व, और दो एक द्रव्य के गुण में होती है उन्हें बोलते हैं अन्यता, और भिन्नता दोनों को बोलते हैं। तो इसलिए भिन्न शब्द का प्रयोग हो तो हमें विवेक पूर्वक ये निर्णय करना पड़ेगा कि यहां ये अन्यता के अर्थ में है कि पृथकता के अर्थ में है, ये हमें विवेक पूर्वक निर्णय करना पड़ेगा। हो गया और खत्म, हो गया। इस प्रकार इन दोनों में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता सिद्ध होती है। विगत गाथा में यह बताया गया है कि सर्वथा अभाव का नाम अतद्भाव नहीं है। देखो अब एक लाइन में इस गाथा में क्या कहा ये बताया है। अब इस गाथा में यह बता रहे हैं कि सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, इस प्रकार इनमें गुण गुणी का संबंध है, वो बात आगे करेंगे। चलो हो गया समय।